कमरा शांत था, बहुत शांत। बस छत के पंखे की धीमी सी आवाज, जैसे किसी पुराने किस्से की धड़कती हुई रेखा। दीवार की घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी, जैसे हर सेकंड किसी अनकहे इंतजार की गवाही दे रहा हो। शामली करवट बदल रही थी। रात की जाने कौन से पहर में ये करवटें अब नींद का हिस्सा नहीं, बेचैनी की पहचान बन चुकी थीं। वो साड़ी जो दिन भर की थकावट के बाद उसने बेमन से लपेटी थी, अब बिस्तर की सिलवटों में उलझी हुई थी। हल्का पल्लू उसके सीने से खिसक गया था, लेकिन उसे अब इसकी कोई सुध नहीं थी। वो आएंगे भी या आज भी नहीं? ये सवाल शायद उसके अंदर गूंजते हुए गायब हो चुका था, या शायद उसे खुद से जवाब की उम्मीद नहीं थी। शामली ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की, लेकिन नींद अब कोसों दूर थी। हल्की हवा खिड़की से आ रही थी और उसके खुले गले में चुपचाप समा रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उस थकान के पीछे था एक अनकहा इंतजार, एक अधूरी जिज्ञासा जो अब धीरे धीरे भीतर ही भीतर आकार लेने लगी थी। तभी दरवाजे के पास किसी के कदमों की आहट हुई, बहुत धीमी, बहुत सधी हुई। शामली के बदन में एक हरकत हुई। नजरें अब भी बंद थीं, लेकिन सांसें धीमी होने लगीं। पलकें भले ही झुकी हुई थीं, पर कान पूरे सजग। विश्वनाथ लौट आया था। वो हल्के कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। घड़ी की टिक टिक जैसे थम गई थी। उस घड़ी से ज्यादा अब शामली की धड़कनें तेज थीं। आ गए, ये शब्द उसने मन में कहा, होंठ हिले तक नहीं, लेकिन चेहरा जैसे थोड़ी राहत से भर गया। वो चाहती तो उठ सकती थी, एक पत्नी की तरह, एक साथी की तरह, पर जाने क्यों उसका मन उन पलों को केवल महसूस करना चाहता था, जीना नहीं। विश्वनाथ ने शर्ट की बटन खोलनी शुरू की थी। शामली की बंद पलकों के बीच से एक महीन सी रेखा खुली, बहुत हल्की, जैसे कोई चोरी करते पकड़ा न जाए। वो जो देखा उसने, वो कुछ पल के लिए सांस रोक देने जैसा था। विश्वनाथ की शर्ट अब उतर चुकी थी। उसका सीना चौड़ा, गहरा और किसी मजबूत दीवार सा लगा, जैसे उसमें कोई थकान नहीं, कोई लाचारी नहीं, जैसे उसमें एक दुनिया है जिसमें शामली को कभी जगह नहीं मिली। इतना मजबूत, कितना सख्त, वो मन ही मन सोचने लगी। फिर अचानक उसने खुद को टोका, मैं ये क्या देख रही हूं, ये तो मेरे पति हैं। लेकिन उस लेकिन ने ही तो उसे रोक नहीं पाया। अब उसकी नजरें उसकी पीठ पर थीं, जो अब कमरे के कोने में खड़े दर्पण में झलक रही थी। हल्की रोशनी में विश्वनाथ का बदन जैसे कोई पुरानी कहानी का योद्धा हो, चोट खाया लेकिन झुका नहीं। शामली की नजर उसके कंधों पर गई, चौड़े फैले हुए, जैसे उस पर सिर रखकर सारी दुनिया की थकान मिटाई जा सकती हो। अब विश्वनाथ अपनी पैंट बदल रहा था, और यही वो पल था जब शामली ने तुरंत अपनी पलकों को बंद कर लिया, जैसे किसी चोरी पर रंगे हाथों पकड़ी गई हो। पागल हो गई हूं क्या मैं? उसका दिल थक थक कर रहा था, और उस धड़कन में डर नहीं था, सिर्फ हल्का सा कौतूहल था। पर कुछ ही सेकंड्स बाद उसने फिर से पलकों की महीन दरार से देखा। इस बार उसकी नजरें सीधे विश्वनाथ के सीने पर थीं, अब पूरी तरह खुला, अब पूरी तरह सामने। कहीं कोई झिझक नहीं थी उसमें, उसकी सांसें अब गहरी हो चली थीं। ये सीना, ये मर्द, क्यों लगता है जैसे इसके पास बैठ जाऊं तो कोई सवाल बाकी ना रहे? उसने धीरे से करवटी। अब वो आधे खुले पल्लू और आधी जागी आंखों के साथ बस उसे देख रही थी, चुपचाप, बिना कोई आवाज किए। विश्वनाथ अब शर्ट पहन चुका था, लेकिन वो कुछ पल के लिए आईने में खुद को देखता रहा, और शायद उसने महसूस कर लिया था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस पैंट की जेब से कुछ निकाला, टेबल पर रखा, और फिर धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया, शायद पानी के लिए। शामली अब आंखें बंद किए तकिए पर हल्की मुस्कान के साथ थी। आज पहली बार लगा मैं सच में किसी की पत्नी हूं। उसके मन में अब कोई डर नहीं था। अब जो था वो था सिर्फ एक हल्का सा मोह, एक हल्का सा खिंचाव और एक चौड़े सीने की छवि, जो अब नींद के उस कोने में समा चुकी थी जहां से जागना भी अच्छा लगता है। कमरे में फिर वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार वो सन्नाटा खाली नहीं था। अब वो अब भी जाग रही थी, लेकिन अब करवटें बेचैन नहीं थी। अब वो करवट उस तरफ थी जहां विश्वनाथ का चौड़ा सीना थोड़ी देर पहले था, और अब भी उसकी आंखों के पीछे छुपा हुआ हर सांस में धड़क रहा था।